الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج هم سورة طه آيات نمبر 42 سے 76 تک کریں گے، ڈیڑھ رکوع بنتا ہے، ٹھیک ہے. اب پہلا جو پارٹ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو تسلیاں دی جا رہی تھیں، سیکنڈ پارٹ میں یہ لمبا ایک پارٹ ہے جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس میں بھی مومنوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی تک جو ہم نے دیکھا، تو ہم نے لاسٹ آیت کے اندر جو ایک لمبی آیت تھی، ہم نے اس کے اندر دیکھا آیت 39 میں 40 میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہ کہ میں نے کیا کیا تمہارے پر انعامات کیے، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وش گرانٹیڈ، آپ کی دعا قبول ہو گئی. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، اے موسیٰ ہم تو آپ کی حفاظت کرتے رہے ہیں، ہم تو تھرو آؤٹ آپ کے اوپر انعامات کی بارش کرتے رہے ہیں. اور کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو فرعون کی طرف بھیج رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کچھ ڈر رہے تھے اور انہوں نے دعائیں بھی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری دعائیں قبول کر کے فرمایا پہلے بھی تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائی ہیں، یعنی آپ یقین کریں کہ آگے بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ جس وقت آپ ایک بیبی تھے، آپ کو کچھ بھی اپنے اوپر کچھ بھی اختیار نہیں تھا، کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتے تھے. بالکل ایک جو یعنی نیو بورن ہوتا ہے وہ کتنا ولنریبل ہوتا ہے، کتنے زیادہ اس کی توانائی اور قوت اور کمزور ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا خیال کیا، اور آپ کا ہی نہیں آپ کی ماں کا بھی خیال کیا کہ ان کے دل کو بھی کیسے تھام لیا، اور کیسے آپ کی بہن کو اس طرح وہاں تک پہنچایا، کیسے آپ کے اوپر محبت ڈال دی. دیکھیں ایک بچے کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس سے وہ لڑ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی کہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. ہر کوئی دیکھتا ہے تو بے بس ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایسی محبت بھر جاتی ہے ان کے لیے. یہ بھی ایک ہتھیار ہے نا کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے، کیونکہ دل ہی نہیں کرتا، سب کا دل کرتا کہ ان کو پیار ہی کریں، ان کو گود میں اٹھائیں، ان کو دیکھیں، ان کی کیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح پالا. سبحان اللہ، جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ والی صورتیں ہمیں ہماری پریشانیوں سے نکالنے والی ہیں، آزمائشوں سے، مشکلات سے، مسائل سے آزاد کر دینے والی ہیں، تو کیا چیز ہے ان کے اندر؟ ان کو ایسے جنتر منتر سمجھ کے پڑھتے نہ رہیے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے یہ دل کو تھام لیتی ہیں یہ صورتیں، کیسے ان کے اندر تسلی. مثال کے طور پہ آپ یہیں دیکھیں کہ انسان بہت دفعہ اپنے فیوچر کے لیے پریشان رہتا ہے، کیا ہوگا، کہ اب کیسے ہوگا، اب کیا کریں گے، پھر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ انسان کو یاد کراتا ہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے نا، اس وقت بھی تو اللہ نے تمہاری کیئر کی تھی، تب آگے کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو ہے وہ جس نے اس وقت سنبھالا، کیا وہ اب نہ سنبھالے گا تمہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پاسٹ یاد کرا کے ان کو تسلی دی جا رہی کہ آپ گھبرائیں نہیں، وہ اللہ تو اس وقت بھی جس وقت آپ اتنے سے تھے اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھا، اور اس وقت بھی اس نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے مدد کرنے کے. دیکھیں کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کوئی نہیں تھا، لیکن یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے نا. جو دریا چل پڑا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی چلتا ہے، وہ اس میں ایک بیبی ہے، وہ کوئی کشتی تھوڑی جا رہی ہے، یہ تو سمندر ڈبو دیتے ہیں بڑے بڑے جہازوں کو، اور کہاں ایک ٹوکری سی جا رہی ہے جس میں ایک بیبی ہے. कैसे अल्लाह के हुक्म से उस टोकरी को कहां से कहां उस ताबूत को पहुंचा देता है दरिया, कि जो दुश्मन तेरा भी और मेरा भी, जिससे बचाने के लिए तो मां ने इसमें डाला था, उसी के पास पहुंचा दिया। लेकिन अल्लाह ताला दिखाता है कि जब अल्लाह तुम्हारे साथ होता है ना, और अल्लाह हिफाजत करने पे आए, तो दुश्मन की गोद में भी तुम्हारी हिफाजत करेगा। दुश्मन जिसने पता नहीं कितने लाखों बच्चों को जिबा कर दिया इस मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे, वही मूसा अल्लाह ने पलवाए उसकी गोद में, सुभान अल्लाह। तो इंसान के लिए बहुत लेसन्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। देखिए फिर माँ को कैसे तसल्ली दी थी, माँ का दिल जो होता है ना वो औलाद के अंदर खोबा होता है, माँ का दिल औलाद के पीछे परेशान रहता है, चाहे औलाद छोटी हो या बड़ी हो। अब माँ के दिल को करार कौन देने वाला है, वो अल्लाह ही है। जब माँ भी अल्लाह के हुक्मों पे चलने वाली हो ना, अल्लाह ताला के हुक्म पे ही चली ये माँ भी, कि अल्लाह ताला ने जब इल्हाम किया दिल में, तो अल्लाह ताला के किए हुए इल्हाम की बेस पे तो उन्होंने बच्चे को ताबूत में डाल के डाल दिया पानी में, तो फिर अल्लाह ही संभालने वाला है। उस माँ के दिल को भी अल्लाह ताला ने करार दिया, तो वो जो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल को करार दे सकता है, वो आज की माँ के दिल को भी करार दे सकता है, वो संभाल सकता है, वो थाम सकता है इन दिलों को। क्या तो बहुत कुछ लेसन है, बहुत कुछ बातें हैं। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट दुआ पढ़ी, वो दुआ के जो जब आपका बच्चा कुछ याद करने लगे, या आप कहीं कोई स्पीच देने लगे, आप चार लोगों में बैठ के बात करने लगे, आपको कोई घबराहट हो रही है कि मैं कैसे बात करूंगी इन लोगों के सामने, पता नहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे समझ नहीं आएगी मैं कैसे बोलूं, इस दुआ को दिल से कीजिए। फिर आप कहीं दावत का काम करने जा रही हैं, आप कोई तालीम देने जा रही हैं, या आप खुद तालीम ले रही हैं, तो अल्लाह ताला सीना खोल देगा, उसी चीज को आसान कर देगा, जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए की। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको एक ताकीद भी की कि मेरे के मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हम तेरा जिक्र बहुत करेंगे। और यहाँ पर आज का जो हम लेसन देखने जा रहे हैं, उसमें अल्लाह ताला ने इसी बात को रीइंफोर्स किया कि आपने मेरा जिक्र नहीं भूलना। ठीक है, अच्छा जब हम ये पढ़ेंगे ना, तो आपको शायद थोड़ा सा ये हो कि ओके हमें तो पहले ही पता है, और हमने तो ये वाकया पहले ही पढ़ा हुआ है, सो यू लूज इंटरेस्ट के जो है ना, हमें तो आती है सारी स्टोरी। देखिए बात इसके ऊपर ना सोचें, जब आप तफसीर सुनने लगे तो आपके आई नो कि आपको आती होगी, आपने कहीं ना कहीं पहली दफा भी सुन रहे हैं अगर कुरान पाक की तफसीर, तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा ये वाकया। बात ये नहीं है कि मुझे तो पता है कि इसका आउटकम क्या था, मुझे तो पता है इसका नतीजा क्या था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, दैट्स इट। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर रख के देखें, और फिर देखें कि हाउ डू यू फील, आपके ऊपर क्या गुजरती है। हमने आपसे कोई कहानियां सुन के और उसके नंबर नहीं लगवाने, बात ये कि हम इसे लेते क्या है। लुक एट द सिचुएशन जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम खड़े में, इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारी सूरतें जो हैं ये आजाद करने वाली हैं, इनमें आप थ्रू आउट देखें परेशानियां, मुश्किलें, स्ट्रेस, इतना ज्यादा स्ट्रेस कि स्ट्रेस की हाइट इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि बीवी मरियम कह रही है अलैहिस्सलाम, कह रही है कि काश मैं मर गई होती, मैं कोई भूली बिसरी दास्तान बन चुकी होती। आप स्ट्रेस का लेवल सोच सकते हैं, आप स्ट्रेस का लेवल सोच सकते हैं कि एक बूढ़ा आदमी है, पता नहीं कब से दुआएं कर रहा है, जाहिर सारी जिंदगी से कर रहा होगा दुआएं, और अब जाके भी जिस वक्त इतना बुढ़ापा आ गया कि हड्डियां चिटक गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन अल्लाह से ना उम्मीद नहीं हुआ, अल्लाह सुभान ताला की तरफ फिर भी उम्मीद से हाथ उठा के बैठा है। इसका मतलब कोई पहली दफा तो नहीं उठा रहे थे हाथ ना, इसका मतलब पहले भी पता नहीं कितनी दफा मांगा होगा, लेकिन किस वक्त अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे, यू नेवर नो। आप सूरह कहफ देख ले, उससे पहले हमने वो पढ़ी है। आप नबियों की तो बात आप सोचते हैं कि वो तो नबी हैं, ये उसके अंदर तो आम लोगों के किस्से हैं, उनकी जिंदगी में कितना स्ट्रेस आया, अस्हाबे कहफ की जिंदगी में कितना स्ट्रेस था। मूसा अलैह सलाम के जो स्टोरी के अंदर तीन जो वाकयात हैं उनमें कितनी स्ट्रेसफुल बातें। एक वो लोग हैं जो इतने बखील हैं कि किसी को पूछे भी ना, और वो तो इनका खजाना लूट लेंगे बच्चों का, छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं। एक वो है जिनका बेटा खत्म हो गया, उनके ऊपर कितना बड़ा सदमा, उसकी मौत वाकई हो गई। एक वो है जो वैसे ही गरीब मिस्कीन है और उनकी एक कश्ती है वो भी टूट गई। यानी आप देखिए ना, हम सोचते हैं कि हम ही स्ट्रेस में हैं, हमारी सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल, हाय हमारे ऊपर बड़ा गम, हाय हमारी बड़ी परेशानी। और इस दुनिया में यकीन करें हर एक को लगता है मेरे से ज्यादा बड़ी परेशानी तो किसी की है ही नहीं। अल्लाह ताला माफ करे, लोग जहन्नुम में भी होंगे तो उसमें भी आता है ना कि हर कोई कहेगा मेरे से ज्यादा बड़ा अजाब किसी का भी नहीं है। हत्ता कि जिसके पास सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा ना, वो कहेगा सबसे ज्यादा अजाब में मैं ही हूँ। इसी तरह दुनिया के मसाइल को भी हम ऐसे ही लेते हैं, जो जिस मसले में भी है, जिसकी जो भी गम या परेशानी है, उसको लगता है मेरी सबसे बड़ी है, मेरे से ज्यादा बड़ी किसकी होगी, बाकी सारे तो अच्छे ही रह रहे हैं, चलो उसके पास ये है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, हमेशा इंसान को लगता है कि वो सारे तो अच्छे ही रह रहे हैं, मैं ही हूं एक मुश्किल के अंदर। तो ये स्ट्रेस सिर्फ आज नहीं है, स्ट्रेस हर जमाने में लोग उससे गुजरे, लोग परेशानी में मुब्तला हुए, लोगों के सामने बहुत बहुत ऐसे हालात आए जो इंतहाई परेशान कुन थे। वो ऐसे ही अगर आज आपको पता चल रहा है कि ओ वो ही गॉट अवे विद दिस, और ये इसमें से भी निकल गए, इसमें से भी निकल गए, बिकॉज आपको पता है कि आगे कहानी में क्या है, तो आप बड़े मजे से सुन के और आप सोचते हैं कि नहीं ये तो हो ही जाना। लेकिन कभी आपने सोचा कि जिस वक्त वो उन चीजों से गुजर रहे थे, उस वक्त उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, जब वो उन हालात के अंदर थे, तो आपको पता है कि एक रात भी जो मुश्किल की होती है वो कितनी इंसान के ऊपर काटनी दुश्वार हो जाती है, कितनी बड़ी मुश्किल बन जाती है वो एक रात भी जो मुसीबत की हो, तकलीफ की हो, गम की हो। कोई मसले मसाइल इंसान के चल रहे हो ना, तो पूरी रात ऐसे लगती है कि जैसे रात कट ही नहीं रही। और कहाँ ये एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, साल साल चलते जा रहे हैं ऐसे। चाहे आप मक्की दौर देख लें, चाहे आप मूसा अलैहि सलाम का ये वक्त देख लें, इजी तो नहीं है। क्या इजी था कि एक शहजादा, या जाहिर है शहजादे थे, उनको अडॉप्ट किया हुआ था बीबी आसिया ने, वो शहजादा कैसे एक ऐसे जगह पर आकर एक दिन खड़ा हो गया है कि ना उसके पास छत है, ना उसके पास खाने पीने को कुछ है, ना कोई पहनने ओढ़ने को कुछ है, ना उसके पास कोई जॉब है, ना उसके पास कोई प्यारा है। वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और उसको पता ही नहीं जाना किधर है, मेरी मंजिल कहाँ है। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह ताला ने वो वक्त भी याद दिलाया कि देखो हमने तुम्हें उस वक्त भी निजात दी थी जब तूने एक नफ्स को कत्ल कर दिया था आयत 40 में, वो वक्त भी याद दिलाया अल्लाह ताला ने। तो आसान तो नहीं था, उसके बाद 10 साल बकरियां चराना आसान तो नहीं था। कहाँ एक बैठा हुआ महलों के अंदर लड़का और कहाँ बकरियां चरा रहा है, 2 दिन 3 दिन की तो बात नहीं थी। क्या इंसान सोचता है यही मेरा फ्यूचर रह गया, अब यही करूंगा मैं। हाय हाय, हम तो क्या रहते थे, इंसान अपने वो जो उसने ऐश के दिन होते ना उनको याद कर करके इंसान हमेशा फिर डिप्रेस और होता ही रहता है कि हाय हम तो इतने अच्छे रहते थे, आज हमारे पर ये हालात आ गए। मैं तो ऐसी थी, मैं तो अपनी अम्मी के घर में ये हुआ करती थी और ऐसे करती थी, आज मेरे ऊपर क्या आ गई है, मैं किन चीजों में फंस गई, इंसान उससे ही नहीं निकल पाता। लेकिन लुक एट हिम, सो जस्ट इसको जो है ना फील करने की कोशिश करें, जस्ट आयास को ऐसे नहीं लें, वरना बहुत आसान सबक है। मैं यकीन जाने 10 मिनट में ना ये आयतें सारी पढ़ के ना और आपको बता सकती हूँ, और आप भी आराम से फारिग हो जाए, क्लास बस इतनी ही हो, लेकिन हासिल क्या होगा उससे। ठीक है, आयतें बहुत आसान है मगर इनका मैसेज बहुत पावरफुल है। यही वो मैसेज है जिसने उन मुसलमानों को जो मक्का के अंदर हालात की चक्की में पिस रहे थे, टॉर्चर में मुब्तला थे, जो दिन और रात मुशरिकीन मक्का से ताने और बातें और मजाक और यही नहीं, सिर्फ फिजिकल प्रोसिक्यूशन, इतना टॉर्चर किया जाता था। उन सब हालात के अंदर जिनकी जिंदगी खत्म होके रह गई थी, उनमें ये आयतें थी जो उनके लिए मरहम थी। क्या बात है कि उनके लिए मरहम थी तो हमें क्यों नहीं आज चैन आता? हम जब कुरान के आगे बैठते हैं तो हमें क्यों नहीं ये तसल्ली दे रहा? उनके इतने हालात में, बिल्कुल वर्स हालात के अंदर भी इसने उनको तशफी दी, उनके दिल को थामा, मेरा और आपके क्यों नहीं थामता? तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि बस अच्छा अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, ठीक है? मुझे पता है कि आपको पता है क्या हुआ। देखना ये है कि मेरे लिए क्या मैसेज है, खड़े करके देख लें, किसी के शूज में आके देखें। जब आपको उसमें आप फील करने लगेंगे ना, तो वापस अपनी सिचुएशन में जब आएंगे तो फिर लगेगा कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छे हालात में हूँ, नहीं मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा दिल से, क्योंकि मेरे से पहले जो मुझसे बहुत बेहतर थे, मुझसे बहुत बेहतर थे, जिनसे रब्बुल इज्जत ने कलाम फरमाया, जिनसे बात की, मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर थे, उनके साथ ये गुजरी, तो मैं क्या चीज हूं? ठीक है, तो थोड़े से अपने ना जहन को हाजिर करके, उस चीज के अंदर अपने आप को महसूस करके, उसके अंदर ले जाके फिर इन आयात को सुने, ठीक है? इसके लिए आपका फोकस चाहिए होती है, आपकी कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो अब ये अब बातचीत चल रही है किसके दरमियान, हम कहाँ पे हैं सूरा में, इस जगह पे हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं कहाँ पे हैं? थोड़ा सा याद करें कि मूसा अलैहिस्सलाम वादी तुवा में अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे हम कलाम है, अल्लाह ताला ने नबुवत दे दी, अल्लाह ताला ने साथ तसल्ली भी दे दी, और फिर फरमाया इधहब अंता व अखुक, जाओ तुम भी जाओ और तुम्हारा भाई भी, आयाती मेरी आयात के साथ, वला तनिया फी जिक्री, और मेरे जिक्र में याद रखना, सुस्ती ना करना। उन्होंने खुद भी कहा था कि अल्लाह मेरे भाई को भी मेरे साथ नबुवत दे दे, मैं और वो मिलके तेरा बहुत जिक्र किया करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना। क्यों क्यों जिक्र की क्यों ऐसे बात आई? इसलिए कि कोई भी दाई जो अल्लाह के दीन की दावत देने वाला है, वो कामयाब नहीं हो सकता अगर वो अल्लाह के जिक्र में सुस्ती करता है। अल्लाह ताला का जिक्र क्या है? अल्लाह ताला का जिक्र सिर्फ ये नहीं है कि जो हम तस्बीह करते हैं, ये भी है अल्लाह का जिक्र, मगर नमाज भी अल्लाह का जिक्र, और बहुत बेहतरीन जिक्र का तरीका है, अल्लाह को याद करने का तरीका, ठीक है? नमाज जस्ट एक रुकू सजदे तशहुद, ये नहीं है, ये अल्लाह की याद का तरीका है कि इंसान खो जाता है, क्योंकि ना किसी और से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा, आप एक तरफ लग के और अल्लाह से बातें करने लगे, तो ये अल्लाह को याद करने का तरीका। इस तरह कुरान है अल्लाह को याद करने का तरीका, जिसमें अल्लाह ताला आपसे बात फरमाता है। और फिर आपके ये जो अज़कार, जो आप तस्बीहात करते हैं, ये भी अल्लाह को याद करने का तरीका। जुबान से आप जब जुबान को चलाते हैं ना तस्बीह करने में, ये भी अल्लाह की याद है, और दिल में जब आप अल्लाह ताला से बातें करते हैं तो ये भी अल्लाह की याद है। और जब इंसान दुआएं करता है ना, जब इंसान को कोई कोई भी मरहला आता है, वो दुआ करता है, वो भी अल्लाह की याद है। इसी तरह उठने बैठने सोने जागने की हमें जो दुआएं सिखाई गई हैं, वो भी अल्लाह की याद है। आपको पता है एक बात, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि करवट बदलने की भी दुआ है। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल वाहिदुल कहार, रब्बु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा ल अज़ीज़ुल गफ्फार, ये करवट बदलने की दुआ, सुभान अल्लाह, यानी वो भी एक दुआ है। बाकी तो हमें पता है, बाथरूम जाने की एक दुआ है, खाना खाने की दुआ है, खाना खत्म करने की दुआ है, बाथरूम से निकलने की, सुभान अल्लाह, बाथरूम से निकलने की क्या है, एक दुआ। फिर दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी असाबनी अज़ाब वली, तो है ही वो फ़ुरानक। वो फ़ुरानक क्यों कहते हैं? अल्लाह थोड़ी देर के लिए ऐसी जगह पे थी जहां पे तेरा जिक्र नहीं हो सका, तेरी याद से कट गई, अल्लाह इसके ऊपर भी माफ कर देना। सुभान अल्लाह। फिर देखें सोने जागने की दुआएं हैं, फिर देखें सवार होने की गाड़ी में दुआएं हैं, फिर घर से निकलने की दुआएं, घर में दाखिल होने की दुआएं हैं, कोई नया काम शुरू करने की दुआएं हैं, किसी कोई तकलीफ दे या मुश्किल की किसी कोई बात के कोई ऐसी दुख भरी बात सुन ली तो उसकी भी दुआएं हैं, उसका भी जिक्र है। खुशी मिली तो वो भी सज्दा शुक्र है, उसमें भी जिक्र है अल्लाह का। कोई फिकरात हुई तो नमाज की तरफ आप बढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था, वो भी एक जिक्र है। मतलब आप देख लें कि हर जगह के ऊपर आपका कनेक्शन जुड़ा रहे, ये है जिक्र, ये है याद। ठीक है, याद सिर्फ ये तस्बीह में इतनी 100 दफा ये पढ़ लिया, 100 दफा ये पढ़ लिया, ये नहीं है सिर्फ। और ये ही याद जो है ना, ये फ्यूल है, फ्यूल है उस काम के लिए जो मूसा अलैहि सलाम करने जा रहे थे, और वो है अल्लाह की तरफ बुलाना। ये इंसान को चलाए रखता है। याद रखिए कि आप बड़े जोश से पढ़ने का मसलन तालीम का काम शुरू करते, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्पीड धीमी होने लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान थकने लगता है, उकताने लगता है। तो ये इसलिए कि जब अल्लाह की याद साथ नहीं होती, जब याद के साथ तालीम भी लेंगे ना तो आप देखेंगे कि आप चलते ही चले जाएंगे, आपकी स्पीड स्लो नहीं होगी। इसी तरह आप दावा का काम करते हैं ना, जहां पे भी दावत देने के लिए आजकल हमारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स दावा के लिए निकले हुए हैं, तो जब आप किसी बूथ पे खड़े हो तो जिक्र करते ही रहें, जिक्र करते ही रहें। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया कि मूसा अलैहि सलाम से कि आपने अल्लाह के जिक्र को नहीं छोड़ना, अल्लाह की याद को नहीं छोड़ना, क्योंकि बाज दफा इंसान दावत का काम करने लगता है ना तो वो सोच रहा है मैं तो अल्लाह के रास्ते में निकली हुई हूँ, अब अल्लाह के जिक्र की क्या जरूरत है। नमाज में कमी आने लगती है, कुरान पढ़ने में कमी आने लगती है। मसलन आपने ये तालीम शुरू की, अब उन्हें मुझे टाइम ही नहीं मिलता अब तिलावत करने का, अब तो मुझे टाइम नहीं मिलता नमाज का। नहीं, अल्लाह की याद साथ रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह ताला को याद करता रहता है ना, अल्लाह ताला उसके साथ रहता है, अल्लाह उसके साथ होता है। और ये जो जिक्र है ये दिल को गम और परेशानियों से दूर करता है, दिल में सुरूर पैदा करता है, दिल में सुकून पैदा करता है, दिल को इत्मीनान देता है। ठीक है, तो इससे बड़े फवायद आते हैं, शैतान को दूर कर देता है, जन्नत में महल बनने लगते हैं उसके लिए। और इसीलिए तो इंसान कयामत के दिन बड़ा ही पछताएगा, कहेगा हाय जिक्र से तो लोगों ने इतने बड़े बड़े मकाम हासिल कर लिए, जिक्र करना तो बड़ा ही आसान था और मैंने क्यों जिक्र छोड़ दिया, मैंने क्यों नहीं अल्लाह का जिक्र करके बुलंद मकाम ले लिया, ये तो बड़ा ही आसान था। देखिए ना, अगर आपने चले नमाज के लिए आप खड़ी नहीं भी हो सकती, आप बैठी बैठी अल्लाह का कुरान पढ़ती रहे, बैठी बैठी आप तस्बीहात करती रहे, तो मुझे बताएं इसमें तो कोई आज़ा को हरकत नहीं देनी, कहीं भागना नहीं है, कहीं दौड़ना नहीं है, कहीं कुछ कोई मशीन नहीं चलानी, बैठे बैठे ही आप कर सकती, सिर्फ जुबानी तो हिल रही होती, लेकिन इंसान के ऊपर ये भी कितना मुश्किल हो जाता। तो उस दिन बड़ा पछताएगा, कहेगा हाय जिक्र ही करती रहती, अब जुबान इतनी चलती रहती है बातें करने में, थकती ही नहीं, बोलते रहते सारा दिन लेकिन जिक्र करने में थक जाते। अल्लाह अकबर। तो वो फिर बड़ी पछतावे होंगे, हाय लेकिन क्यों इतने मैंने मौके गंवा दिए, तो बहुत सारा जिक्र करके इतने ऊंचे दर्जे पा सकती थी। और फिर बंदा अस्कार करता है तो वो अस्कार अर्श पे जाते हैं और अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द घूमते हैं और अल्लाह ताला को इंसान की याद कराते हैं, और फिर फरिश्ते उसके लिए जन्नत में महल बनाते हैं। और फिर जब जिक्र छोड़ देता है, भूल जाता है, तो वो फिर कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हैं। अल्लाह अकबर। बच्चों को ये बातें जरूर बतानी चाहिए, बड़े शौक से फिर करते हैं कि आपका महल बन रहा है वहां पे जन्नत में, तो आप जिक्र करते रहोगे, वो कंस्ट्रक्शन जारी रख रहे हैं, और जिक्र कोई भी जिक्र है, अब आप कहेंगे कि कौन सा फिर हम जिक्र करें, कोई भी मसनून जिक्र कर लेना, सुबहान अल्लाह पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, अल्लाह किसको नहीं आती ये, कोई ये नहीं कह रहे, कोई कोई आपको याद करने को दिया जा रहा है, दरूद शरीफ पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू तस्बीह कर लें, कुछ तो करें। इतने सारे अजकार हैं जो मसनून अजकार हैं, हमसे तो किए भी नहीं जाते सारा दिन में, क्योंकि हमारी बातें ज्यादा होती हैं, अजकार कम होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे जिक्र को ना भूल जाना, कि इसी तबलीग के शौक में और इसके अंदर के भाई इतना हम तो बड़ा अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह का काम ही तो कर रहे हैं, अब हमें जिक्र की क्या जरूरत है। ये नहीं, जिक्र साथ होना चाहिए। और ये नहीं फरमाया कि जिक्र करना, फरमाया जिक्र में सुस्ती ना करना, जिक्र में सुस्ती यानी कम ना करना जिक्र। ये ना हो कि दावत का काम करते करते जितना पहले जिक्र करते हैं उससे कम कर दे, क्या ये प्री रिक्विजिट है दावत के काम का। इذهبا इला फरعون इन्नहु तगा, दोनों जाओ फिरौन की तरफ। कौन दोनों? मूसा और हारून अलैहिस्सलाम, तुम दोनों जाओ उसके पास, इसलिए कि वो तगा है, उसने सारी हदें तोड़ के रख दी हैं। आप देख रहे हैं इذهب से आगे अलिफ लग गया तो दो का माना आ गया, पहले भी कहा जा रहा है, अब दोबारा रिमाइंड कराया जा रहा है। पहले भी आया था ना इज़हब इला फिरौना इन्नहु तगा, आयत 24 थी गालिबन, तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी ये कहा गया। अब फिर दोबारा की क्या जरूरत है? इसलिए कि जो मकसद होता है ना उसकी री इन्फोर्समेंट जरूरी होती है, कि बार बार इंसान को रिमाइंड कराया जाए, देखो तुम्हारा ये मकसद है, देखो ये जहन से ना निकल जाए, देखो ये काम है आपका, ये आपने करना है। और बड़े बड़े जो भी ये सेमिनार्स वगैरह इसमें होते हैं, आप देखेंगे बार बार वो जो मकसद होता है ना उसकी रेपिटिशन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इंसान के जहन में बिठाना चाहते हैं। तो वो किसके साथ सरकश था? अल्लाह ताला के साथ भी, कि भाई उसने अल्लाह ताला को मानने के का इनकार भी किया हुआ और खुद अपने आप को कहता था कि मैं रब्बुल आला हूं। तो अल्लाह के साथ भी सरकशी और इंसानों के साथ भी सरकशी, के इतना उनके ऊपर जुल्म किया। आप देखें इससे ज्यादा बड़ा जालिम और कौन हो सकता है, कि जो बेबीज को भी, न्यू बॉर्न बेबीज को जिबा करा दे, उसका मतलब तो वो हार्टलेस इंसान है, उसके पास कोई दिल ही नहीं है। फकूला लहू कौलन लयिनन लअल्लहू यतज़क्करु औ यख्शा। तो तुम दोनों उसको कहना, क्या कहना, बात कैसे कैसे उसके साथ बात करना। खुद आप सोचे कि फिरौन के पास भेजा जा रहा है जालिम जाबिर, इतना सख्त इंसान, इतना ज्यादा अल्लाह का दुश्मन, उसके पास भेजा जा रहा है, तो उसके साथ कैसे बात करनी चाहिए? बहुत गुस्से से, बहुत इश्तियाल के साथ, उसके साथ कोई बात नहीं है, वो उसकी माननी, बस उसको ऐसे कहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, लयिनन नरम बात। और हम सोचते हैं हैरान होके कि फिरौन के साथ नरम बात, वो कोई इस काबिल था कि उससे नरम बात की जाए? लेकिन क्यों कहा गया नरम बात करने को? इसलिए क्योंकि जो ऐसे मुतकब्बिर लोग होते हैं ना, अगर उनसे सख्त उससे बात की जाए, वो तो पहले ही बिफरे पड़े होते हैं, पहले ही वो दुश्मन होते हैं, तो और ज्यादा इम्कान है कि वो बात को नहीं सुनेंगे, बात को नहीं मानेंगे और उल्टा नुकसान पहुंचाने पे आ जाएंगे। तो लेकिन बात जो थी ना, नरम बात, हमेशा वो असर करती है, ज्यादा चांस है उसके असर करने का। और जो सख्त बात है वो दूसरे को बाज दफा उसकी अना को जगा देती है। इसी वजह से जब हम दावत और तबलीग का काम करने लगते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, मसलन आपने अपने बच्चों को ही कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, या और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, तो हमारे अंदर सख्ती आ जाती है, क्योंकि हमें फ्रस्ट्रेशन होती है कि क्यों नहीं ये कर रहे। हम नरमी से फिर बात नहीं करते, चलो एक दिन नरमी से कर लिया, आज जो लेक्चर सुना हुआ था, फिर अगले दिन भी फिर नरमी से कर लिया, उसके बाद तो हमारा पारा चढ़ जाता है कि इसके बाद हम कैसे इनसे नरमी से बात करें, अब तो नहीं मैं नरम बात कर सकती, अब तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी, तो हम सारा अपना टेम्पर लूज कर देते और फिर वो सुनाते हैं कि दूसरे का दिल पुट ऑफ हो जाता है। बाज लोगों के साथ सख्तियां की जाती है ना जब बचपन में, तो उनको यही याद होता है कि हमारे साथ नमाज के लिए ऐसी सख्ती की जाती थी, हमें इतना मारा जाता था, हमें कुरान के लिए इतना मारा जाता था, वो फिर इन चीजों से यानी बदसन हो जाते हैं, अल्लाह के दीन से बदसन हो जाते हैं, क्योंकि उनको जब वो चीज याद आती है ना तो साथ वो मार याद आती है, वो सख्ती याद आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह ताला ने नरमी अता फरमाई उसको बड़ी खैर अता फरमा दी, जिस घराने में नरमी रख दी उस घराने में खैर रख दी, जो काम नरमी से हो सकता है वो सख्ती से नहीं हो सकता।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखें, आप इस चीज को छोड़ें कि कौन से टीचर क्या करते हैं और फलाने बड़े सख्त टीचर हैं और ये है, उस चीजों को छोड़ें, क्योंकि टीचर्स हमारे रोल मॉडल नहीं है। हमारे रोल मॉडल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे सीखें कि कैसे उन्होंने किया। कोई कितनी भी सख्ती, आप ठीक है लोग बताते हैं फलां बड़ा सख्त और उसने सीधा कर दिया और उसने ऐसे कर दिया, ठीक है होंगे वो अपनी जगह, मैं उनको नहीं कुछ कहती, लेकिन रोल मॉडल हमारे लिए अल्लाह के नबी को बनाया गया। फिर उनकी जिंदगी में बता देंगे क्या कितनी सख्तियां थी, अबू जहल के साथ कितनी सख्ती करते थे, अबू लहाब के साथ कितनी सख्ती करते थे, कितनी इवन मुनाफिकीन के साथ कितनी सख्तियां थी, बताएं कोई एक मिसाल ला सकते हैं आप, कि उनके साथ झुंझला के बोले हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो और आज तो मेरा मूड नहीं सही है और आज तो मैं ये बताता हूं उनको, और ये कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। कितने सालों वो तो करते रहे तबलीग, तब भी सख्तियां नहीं थी, नरम बात। और देखें आप जब किसी को बात बताने लगे ना, वो आपके हस्बैंड हैं या बच्चे हैं या बाहर वाले हैं, ठीक है बाहर वालों के साथ तो फिर भी हम थोड़ी नरमी का रवैया रख ही लेते हैं, ज्यादा तो हमारी सख्ती घर वालों के साथ ही होती है, बाहर वालों ने हमारी क्या सुननी, हमें भी पता है अगर सख्ती से बात की तो इससे दो सुन लूंगी, तो वहां पे तो हम बिल्कुल नरम पड़ ही जाते हैं। लेकिन जब हम अपने किसी के साथ करने लगते हैं ना बात, किसी प्यारे के साथ, तो ये सोचा करें कि ये जो बंदा है जितना भी बुरा हो, जितना भी बुरा हो, फिरौन जितना तो नहीं हो सकता ना। अगर अल्लाह ताला ने फिरौन के लिए भी मूसा अलैहि सलाम से फरमाया कि आप उसे नरमी से बात करें, तो मुझे कैसे करनी चाहिए, ठीक है। और मैं जितनी भी बड़ी नेक और पारसा और पता नहीं क्या क्या चीज हूं, मैं मूसा अलैहि सलाम से बढ़ के तो नहीं। अगर मूसा अलैहि सलाम को नरमी करने का हुक्म दिया गया तो मुझे कितना होना चाहिए। लेन होते ना बहुत नरम, सिल्क को कहते हैं असल में, सिल्क कैसी नरम होती है, हाथ में आए तो ऐसे फिसल जाए। देखो अगर आप किसी को हकीर समझ के बात करेंगे ना, ये क्या चीज है, लो इनको तो देखा हुआ, ये तो ऐसे ना कुछ अक्ल है ना समझ है, देखो जरा ये कितने दीन से हटे हुए हैं, देखो जरा किन चीजों में गाने बजानों में पड़े हुए हैं, बेपर्द फिर रही हैं, देखो ऐसी हैं ये ऐसी हैं, तो खुद ब खुद इंसान के अंदर ही आने लगता है कि मैं तो इन सबसे बेहतर हूं। जब आप इस रवैये के साथ दावत देंगे ना, तो दावत का असर ही खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब आप अपने आप को एक आम मुसलमान समझ के कि मैं तो कोई चीज नहीं, मेरा काम है मैं आगे बता दूं, मैं भी कोशिश में लगी हुई हूँ, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, जब इस रवैये के साथ आएंगे तो एक हमदर्दी होगी। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आल सूरह आल इमरान में फरमा दिया, फबिमा रहमत मिनल्लाहि लिंत लहुम, आप अल्लाह की रहमत है कि आप इनके साथ नरम है, अगर आप इनके साथ है नबी सख्त होते ना तो ये आपके गिर्द से भाग जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने फरमाया, तो रहमत भी अल्लाह की तरफ से होती है। इकरमा रजी अल्लाह ताला, जब वो अबू जहल के बेटे थे, जब वो इस्लाम लाने के लिए आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पहले से फरमा दिया कि जब वो आएंगे ना तो उनके सामने उनके बाप को अबू जहल ना कहना, क्योंकि उसका नाम अबू जहल थोड़ी था, उसका नाम तो अबुल हकम था, हिकमत का बाप, बड़ा अकल वाला बड़ा समझ वाला अपनी तरफ से बनता था, लेकिन देख लो आज तक अबू जहल के नाम से ही मशहूर है, क्योंकि भाई इनका दिल दुखेगा इसलिए इनके सामने ऐसे ना कहना। तो हम कैसे लोगों से बात करते हैं, कभी हम सोचते भी हैं कि इससे किसी का दिल दुखेगा। देखिए जो नसीहत होती है ना हमेशा कड़वी होती है, अब वो कड़वी को अगर आप खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत लहजे, खूबसूरत अंदाज के साथ करेंगे तो शायद कुछ असर कर जाए, वरना वो ऑलरेडी इतनी कड़वी होती किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे बताओगी, मुझे कहेगा, मुझे सिखाएगा। और आप देखें आप किसी अपने बुजुर्ग को भी कोई बात बताने लगे ना, तो वो कहते हैं लो कल का बच्चा मुझे सिखाएगा, तो कहां फिर ऑन, वो कहेगा कि मूसा अलैहि सलाम तो हमारे घर में पले और आगे आप पढ़ेंगे भी ये बात, वो तुम कल के बच्चे मेरे घर में पल के अब मुझे ही बताने शुरू हो गए, तो ये फिर बहुत चांस होता है, इसलिए बहुत नरमी से बात करने की जरूरत है। तो जब इंसान बात करे गजबनाक होके, इश्तियाल में आके, गुस्से में आके, तो वो कहते हैं ना गुस्से में पागल हो गया, वाकई इंसान गुस्से में पागल ही हो जाता है, उसका दिमाग नहीं चल रहा होता, तो बात वो ही होती है, मगर अल्फाज का चुनाव दुरुस्त ना हो ना तो वो ही बात कड़वी हो जाती। जैसे आप किसी से कहें चलो उठो काम करो चल के, और दूसरी तरफ कहें आप अगर उठ के काम कर लेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो नरमी में बड़ी खैर है। अगर कोई आपकी नरम बात नहीं सुन रहा ना, और आप कहते हैं कि नहीं नरमी से कोई फायदा नहीं होता, कोई सुनता ही नहीं है, तो अगर कोई नरमी से नहीं सुन रहा ना तो सख्ती से तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा। नरमी में फिर भी कोई चांस है। और कोशिश करें कि उसकी दिलचस्पी की बात से बात शुरू करें। जैसे आप किसी माँ के साथ बात करें ना, उसके साथ उसका बच्चा देखते हैं, तो पहले बच्चे के बारे में थोड़ी बातें कर लें, कैसा है ये बच्चा, कैसे करता है, इसका किस क्लास में है, क्या इसके शौक हैं, बस ऐसी थोड़ी सी बातें, फिर अपनी बात पहुंचाएं, तो फिर ज्यादा इम्कान है कि वो गौर से सुने। पहले उसकी तवज्जो तो हासिल करें। तो कौले लयन के अंदर ना सारी इस तरह की हिकमतें आ गईं जो नरम बात करने के साथ मुतल्लिक है। हमें कोई भी इस्लाम ये जस्टिफिकेशन नहीं देता कि हम किसी को देखें कि वो जो हमारे दिमाग में मयार है एक मोमिन का, उससे जरा कहीं नीचे है तो हम उसके साथ बस अब सख्त लहजा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है, तो मस्जिद नहीं आता, नमाज ही नहीं पढ़ती, ऐसे करती है, ये करती है, तो अब तो मैं तो पक्की नमाजी हूं। आप देखें कई लोग जो पक्के नमाजी होते हैं, खुद मस्जिदों के में मतलब रेगुलरली जाते हैं ना, वो इतने मस्जिद के ठेकेदार बन जाते हैं कि बस हर आए गए को रोकते टोकते रहते हैं। तो लोग बाज दफा मस्जिद जाने से ही घबरा जाते हैं कि हमने नहीं मस्जिद जाना, फिर वो फलां अंकल है वो पीछे पड़ जाते हैं, खासतौर पर बच्चों को देख के। इसी तरह खवातीन है, वो भी कभी किसी का हुलिया ऐसे देख लेंगी तो उसके पीछे पड़ जाएंगी। तो इस तरह की कि किसी की शामत ही ले आना, किसी को मतलब डांटने के अंदाज में, या कोई बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं मस्जिद में या कुछ है तो उन पे चीखना शुरू कर देना, ये कैसी बातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल में तो ये आता है कि कभी किसी को सरेआम कुछ नहीं कहते थे। किसी को कोई गलत कर भी रहा होता था ना, मिंबर पे जाते थे, फरमाते थे लोगों को क्या हो गया वो ऐसा करते हैं, ये नहीं कहते थे तुम उठो तुम ये कर रहे हो, और तुम वहां क्या कर रहे हो, और तुम्हें और कोई काम नहीं है। देखिए इस तरह आप लोगों को भगा देंगे अगर ऐसे बात करेंगे। सीरत पढ़ के देखें, आपको फिर पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसे पॉइंट आउट किया था। हम बच्चों को भी बेइज्जत करते रह सकते हैं लोगों के सामने, और हम लोगों को डांट कर और उनसे रूड होके, और बाज लोग तो बड़ों को भी नहीं बख्शते, बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी नहीं बख्शते, उनके भी पीछे पड़ जाते, फिर उसके बाद हम सोचते हैं हम कितने जबरदस्त मुसलमान हैं ना, नहीं अल मुनकर का हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया उसे कौले लयन कहो लअल्लहु यतदक्करु औ यख्शा, शायद कि वो नसीहत पकड़ ले या डर जाए, क्योंकि जब नरम बात होगी तभी वो नसीहत पकड़ने का चांस है, तभी ये चांस है कि वो डर जाए अल्लाह से और अपनी हरकतें छोड़ दे। और अगर सख्त बात के साथ शुरू किया तो फिर तो उसे बात ही नहीं सुननी ना। कितने लोगों को पता नहीं हम भगा देते हैं अपने रवैयों से। आज तक सोचें कितने लोगों को जलील करके या कितने लोगों को हकीर करके या उनसे डिग्रेडिंग बातें करके हम आज तक उनको भगा चुके हैं। तो कभी भी, चाहे मुसलमानों में आप दावत का काम करने निकले हैं, चाहे गैर मुस्लिमों में निकले, हमेशा पहले ये सोचें कि मैं दावा करने जा रही हूं ना, मेरे अपने दिल में क्या है, इनसे नफरत है, इनसे हकारत है, बेजारी है, दुश्मनी, किसी से भी, मैं कह रही हूं गैर मुस्लिमों से भी, आप किसी काफिर के पास भी जा रहे हैं ना, तब भी पहले अपने दिल का जायजा लें, मेरे दिल में इसके लिए क्या है, या मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी है, खैर ख्वाही है, मोहब्बत है, केयर करती हूं मैं इसकी, ठीक है। अब अगर आपके दिल में जो मैंने पहले बताई हैं चीजें वो है ना, नफरत वगैरह, तो जुबान से चाहे आप सारा टाइम कुरान पढ़ती रहें स्टॉल पे खड़ी होकर, कुछ नहीं होगा, नतीजा वो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर केयर होगी ना, उनका एहसास होगा, तो आपकी टूटी फूटी बातें भी, हम कहते हैं ना हमें आती ही नहीं है बात करनी, हमें समझ ही नहीं आती, वो आपकी टूटी फूटी बात भी कन्वे हो जानी, वो दिल में उतर जानी। अगर आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी है, उससे मोहब्बत है, उसकी केयर है, उसके लिए खैर ख्वाही है, उसके लिए आप सोच रहे हैं, तो पहले अपने अंदर को ठीक करने की जरूरत है, तब हमारे जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो आएंगे। हम कहीं पे भी लोगों को डिग्रेड करने नहीं जा रहे होते, ये क्या इनको तो कुछ आता ही नहीं, ये क्या इन्होंने तो कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ, ये क्या इतने इतने बड़े हो गए अभी तो इनको समझ ही नहीं, ये कैसी बातें हैं। ऐसे रवैया अगर रखेंगे तो वो तकब्बुर है अपने अंदर और कुछ नहीं है। कर लें आप लंबी चौड़ी तकरीरें भी कर लेंगे, कुछ नहीं आना, कुछ हासिल नहीं होगा। सहाबा कराम कहाँ लंबी चौड़ी तकरीरें करते थे, कोई लंबे लंबे दर्श देते थे, वो सिंपल बात करते थे, लोगों के दिल में उतर जाते, क्योंकि वो लोगों के हमदर्द थे, अंबिया भी हमदर्द थे, वो एरोगेंट होके नहीं बात करते थे। अल्लाह अकबर। इसी वजह से जब हम लयन बात नहीं करते ना, कभी कभी स्टार्ट तो बड़ी लयन से करते, उसके बाद एंड जो कन्वर्सेशन का हो रहा होता है वो इतने झगड़े के साथ हो रहा होता है कि बस दोनों एक दूसरे की शक्ल ही नहीं आप देखेंगे, आवाजें बुलंद होने लगती हैं, फिर ऐसे हो, जब ऐसा कुछ ऐसा लगने लगे कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो रहा है, वहां से हट जाए, बस फिर काफी बात हो चुकी है। दू बदू बहस ना करें, ना बच्चों के साथ ना बड़ों के साथ, किसी के साथ भी नहीं। कौला, दोनों ने कहा, अच्छा अब फिर ये दोनों की बात आई है, दोनों ने कहा रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना ना नखौफू, हमें डर है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो तभी एक डर होता है ना, मसलन है कि कोई ऐसा बड़ा दुश्मन है, या कोई सांप है, या जिनसे इंसान को, एक शेर है, या ऐसी चीजें, इनसे अगर कोई डर रहा है तो इसके अंदर ये नहीं कहना चाहिए लो तुम्हारे अंदर कोई खुदा खौफ ही नहीं है, तुम इसी चीज से डर रहे हो, नहीं, एक तभी खौफ है इंसान के अंदर, फितरत के अंदर होता है, तो उसमें किसी को ऐसे ताने देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंबिया ने करा वैसे, मूसा अलैहिस्सलाम, वो जब वो आसा जो है वो सांप बना, तो वो पीछे मुड़ के दौड़े डर के मारे, और आगे भी आएगा, तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं हम डरते हैं, यफ़रुत अलैना, कि वो हमारे साथ ज्यादती करेगा और वो सरकशी करेगा, क्योंकि वो जानते थे ना ये कितना जालिम आदमी है। इफरात तफरीत जानते हैं ना, इफरात कमी करना, तफरीत बेशी करना, जिसको हम कमी बेशी कहते हैं वो इफरात तफरीत, तो यफ़रुत जो है ऐसा लफ्ज है जो दोनों ऑपोजिट्स के मानों में आता है, कमी करने के लिए भी और ज्यादती करने के लिए, तो वो हमारे साथ ज्यादती करेगा। और देखो ना अभी कितनी बड़ी पोजीशन बैठा हुआ, उसको क्या है, वो तो बच्चे जिबा करा के वो इसको पूछने वाला नहीं है, तो इन दो को इनका काम तमाम कर देना उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी। वो किसी पे रहम नहीं खाता था, उसके अंदर रहम था ही नहीं। तो बाज लोगों को सही भी बात बता रहे हैं, उन्होंने उनको समझ आनी नहीं होती, वो और बिफर जाते हैं, और वो भी फिरौन जैसा, वो जरा सी बात किसी अपनी मर्जी के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो ऐसे सरकश के पास जाना है ना, हमें तो डर लग रहा है, हम क्या करें। कौला ला तखौफा, अल्लाह ताला ने फरमाया डरो नहीं, दोनों ना डरो, इन्नी माकुमा, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए इन्नी भी है, इन्नी का भी वही तर्जुमा है, मैंने आपको लेकिन क्या बताया था, जब भी लेटर्स हरूफ ज्यादा हो जाएं तो माने में भी ज्यादती आती, माना भी बढ़ जाता है, और ही ताकीद होती है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जैसे हम कहते हैं मैं हूं ना तुम दोनों के साथ, अस्माउ व अरा, मैं सुनता भी हूं और मैं देखता भी हूं, यानी मैं देख रहा हूं तुम्हें, तुम लोग मेरी नजरों में हो, और मैं सुन भी रहा हूं जो भी कन्वर्सेशन होगी, और ये ओपन एंडेड है, किस चीज को सुन रहा है अल्लाह ताला, जो फिरौन कह रहा है या जो मूसा अलैहिस्सलाम, नहीं, ओपन एंडेड, कुछ सारी जितनी कन्वर्सेशन होगी मैं उसको सुनता भी हूँ, मैं उसको देख भी रहा हूं। और आप देखें इसके अंदर ये अस्माउ पहले आया और देखना बाद में आया, सुनना पहले आया, क्यों, इसलिए कि देख तो इंसान, अब वो दूर भी कोई बिल्डिंग है ना मुझे नजर आ रही है, या दूर वो दो लोग खड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सुनने के लिए आपको करीब होना पड़ता है, लेकिन अगर वो कोई दो बात कर रहे हैं मुझे नहीं सुन रहा, तो इससे क्या पता चलता है कि अस्माउ पहले कहा गया मैं सुनता हूं ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, फिक्र ना करना मैं बहुत करीब हूं, तो डरने की क्या जरूरत, मैं सुन रहा हूं और सुनने के लिए कुर्ब चाहिए होता है, तो और देख भी रहा हूं। और देखे ना, एक एक बड़ा भी किसी बच्चे को भी कह देना कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूं ना, चलो चलते हैं, मैं खुद देख लेता हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो बच्चा भी शेर हो जाता है ना। तो ये तो रब्बे कायनात फरमा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर कितनी बड़ी ढारस है। और ना डरो किससे, ये नहीं फरमाया कि फिरौन से ना डरो, किसी चीज से भी ना डरो, ना हालात से, ना उसकी सजाओं से, ना उसके अजाबों से। फतियाहू, पस जाओ उसके पास, फकूला फिर उससे कहो, इन्ना रसूल रब्बी का फअरसिल माना बनी इसराइल, हम अल्लाह के रब तेरे रब की तरफ से भेजे गए हैं, हमारे साथ बनी इसराइल को भेजें। अच्छा, अब ये देखें, अब आप जहन में ये जरूर रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि ये आयतें जो उतर रही हैं इस वक्त सुनाई जा रही हैं मक्का में, उस वक्त जो हालात हैं और मुसलमान सुन रहे हैं, जो बेचारे अभी नए नए मुसलमान हुए, थोड़े से तो मुसलमान थे, उसे आपको मैंने बताया था कि ये सूरत के बाद ही हजरत उमर मुसलमान हुए थे, वो 40th मुसलमान थे, तो 39 लोग अभी तो सिर्फ मुसलमान है इतने बड़े मुआशरे में, इसका मतलब सारी तरफ कुफर है, जिंदगी को तंग किया हुआ उन्होंने। अच्छा, अब उसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं साथ हूं तुम्हारे, सोचे, और फिर मैं सुन भी रहा हूं और मैं देख भी रहा हूं, जो रब मूसा अलैहि सलाम को सुनता है देखता है वो बाकियों को भी तो सुनता देखता है। अल्लाह अकबर, तो तसल्ली है ना, और आने वाली दुनिया के लिए जितने इंसान आने थे सब के लिए तसल्ली, ये जब अल्लाह साथ हो जाए तो फिर डरने की क्या बात, और वो सुन भी रहा है देख भी रहा है, किसके हालात क्या चल रहे हैं। देखिए, हम सब में हर एक की अपनी अपनी एक कहानी है, हर एक के अपने अपने कोई हालात है जिनसे वो गुजर रहा है, कोई परेशानी, कोई किसी मसले में है, कोई किसी तरह की चीज में है, कोई किसी स्ट्रेस में है, किसी का एक गम है तो किसी का दूसरा है। और उसके अंदर जब ये पता चलता है ना कि मैं अल्लाह के रास्ते पे जम के चलती रहूं तो अल्लाह मेरे साथ है और वो मुझे देख भी रहा है सुन भी रहा है, तो दिल एकदम सुकून में आ जाता है। अल्लाह अकबर, तो उन उसको जाके कहो आप दोनों कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया, ये बड़ा पूरा असर अंदाज है कि ये नहीं उनने कहा हम अपने रब की तरफ से आए हैं, रब तो हमारा भी वही है, लेकिन तुम्हारे रब की तरफ से क्यों कहा, रब पहले तो कौन होता है। अब इतना आपको मैं बता चुकी हूं कि अब आपको ना ये याद हो जाना चाहिए कि रब कौन है, सिर्फ पालनहार ना कहे, पैदा करने वाला, पालने वाला, परवरिश करने वाला, निगहदाश्त करने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, पालने में जितनी चीजें आ जाती हैं सब कुछ। माँ कोई कहती है कि मैं बच्चे को पाल रही हूं तो मैंने उसको खाना खिला दिया, अब वो बीमार होगा तो फिर थोड़ी मेरी जिम्मेदारी है, मैंने बस खाना खिलाना है, नहीं, उसकी हर जरूरत पूरी करना, चाहे उसकी कंघी करनी है, चाहे वो बीमार है तो उसको दवा खिलानी है, चाहे वो परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करना, चाहे उसकी और कोई जरूरत है तो उसको पूरी करना, हर तरह की, वो सब पालने में आ गया, एक लफ्ज है पालने का, उसमें सब कुछ आ गया, हर जरूरत, हर हाजत, हर बात के लिए ये एक लफ्ज है, और रब का जब माना आप करते हैं पालने वाला, तो उसमें सब चीजें ही आ जाती जो इंसान की सारी ही चीजों को पूरा करता, उसकी फिजिकल नीड्स, उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी स्पिरिचुअल नीड्स, सबको, और रब है ना, तो वो जो पालने वाला, जो मालिक है, जो पैदा करने वाला तेरा का तेरा उसने भेजा है, उसका ये पैगाम है, वो तेरा रब है, ताकि उसको याद आए ना कि जिसके साथ मेरा रिश्ता है वो मेरा रब है, उसने मुझे मैसेज भेजा है, वो कोई और नहीं है। और यहाँ पे रसूल आ, हालांकि हारून अलैहिस्सलाम तो नबी है और यहाँ पे रसूल कहा जा रहा है। एक तो इसके अंदर ये बात है, जब दो बातें कही जा रही हो ना तो उनमें से कोई एक को ले लिया भी जा सकता है, एक नबी है एक रसूल है, तो रसूल को कह दीजिए। जैसे वालिद है तो वालिदैन का मतलब होता है दो वालिद, तो वो तो माँ बाप के लिए आता है, तो ये दो तो नहीं है, एक माँ और एक बाप है, लेकिन वालिद को ही लेके उसको तस्निया कर दिया गया, ड्यूल कर दिया गया, ठीक है, कि बनी इसराइल को अजाब ना दो, उनको आजाद कर दो, बोला तो आदिब हूं, उनको अजाब ना देना, उनको हमारे साथ भेज दो। वो पता है कितने अरसे से बनी इसराइल को इसने गुलाम बनाया हुआ था, और ये कब से यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर से आके यहाँ पे मिस्र में बस गए थे, उसके बाद होते होते ये हाल आ गया था कि जो फराइना आए, फराउन तो वहां के मिस्र के बादशाहों का लकब था ना, तो जितने फराइना आए फिर आहिस्ता 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 करते करते इनकी हालत इतनी अबतर कर दी हुई थी कि यानी कोई हकूक नहीं थे, कोई किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं था, किसी किस्म की इनकी कोई सुनवाई नहीं थी कहीं, और बहुत ही बुरे हालात के अंदर इनको रखा हुआ था। तो इन हालात से उन्होंने कहा, एक तो ये कि इनको हमारे साथ भेज दिया जाए, कद जिना का भी आयत मिन रब्बी का, हम निशानी भी लाए हैं, ऐसे नहीं कि हम अपनी तरफ से कोई बात कर रहे हैं, हम तेरे रब की निशानी भी लेकर आए हैं ये साबित करने के लिए कि हम सच्चे हैं। देखो ना, ऐसे ही कोई खड़ा होकर कह दे जी मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे, नहीं, कोई निशानी होनी चाहिए, कैसे पता चले कि ये अल्लाह की तरफ से पैगंबर आया। तो उन्होंने कहा हमारे पास निशानी भी है, सबूत भी है इसका, वसलाम आला मन इत्तबा कल हुदा, और सलाम हो उसका ऊपर जो हिदायत की पैरवी करता है। उन्होंने ये नहीं कहा अगर तेरे ऊपर सलाम हो, क्योंकि काफिर पे तो वैसे भी सलाम नहीं आप काफिर को कर सकते, उसमें पहल नहीं कर सकते आप, कि काफिरों को जाकर सलाम अलैकुम कहें ये नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ एक जनरल बात की उन्होंने कि हर उस शख्स के ऊपर सलामती है जो हिदायत की पैरवी करता है, हिदायत के रास्ते को फॉलो करता है। यानी इसमें एक मैसेज है कि अगर तुम भी हिदायत को फॉलो करोगे ना तो तुम भी सलामत रहोगे। कहाँ पे सलामत, दुनिया में भी और आखरत में भी। तो जो हिदायत पे चलता है वो अपने लिए सेफ्टी का इंतजाम कर लेता है, अपने लिए सलामती का इंतजाम कर लेता है। तो ये एक नुस्खा है, समझ लें इन्ना। अच्छा एक ये भी है ना कि दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, तो ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमारे ऊपर भी किसी ऐसे को मुसल्लत ना करना जो हम पर रहम ना करे, यानी जो जालिम हो, ठीक है। अच्छा और दूसरा, हाँ एक बात और यहाँ पे रह गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैर मुस्लिमों को खत भी भिजवाए थे ना आपने, तो उनको अस्सलाम वालेकुम नहीं लिखते थे कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो, बल्कि यही सलाम हो आला मन इत्तबअल हुदा, उसको सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करता है, ठीक है। इन्ना बेशक हम कद ऊ ही आई लेना, हम हमारी तरफ वही की गई है, अन्नल अदाब अलाम कज़ब व तवल्ला, हमें ये नहीं कि फिरौन के ऊपर जाके वो कहना शुरू हो जाए कि हम बड़े धूम, हमें पता है हम ये कहते हैं तेरा ये हो जाएगा तू हो जाएगा, नहीं हम पे वही की गई है, यानी हमें तो यही पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचाया गया जो हम तुम्हें आगे बता रहे हैं, क्या कि अजाब है उसके लिए जो झुटलाए तकजीब करे और मुंह मोड़ जाए, यानी जो इस पैगाम को नहीं मानेगा हिदायत के पैगाम को उसके लिए अजाब है। अगर उसको कहते कि तेरे लिए अजाब है तो किसी ने सुनना था, तो उसको बता दिया सलामती का रास्ता कौन सा है और अजाब का रास्ता कौन सा है, चूज तुमने खुद करना। और ये नहीं कहा कि हम ये कह रहे हैं, बल्कि ये भी अल्लाह ही की तरफ से पैगाम है। लेकिन ना कितनी हिकमत है दावत देने की ना, इसमें कितना अच्छे पॉइंट्स पता चलते हैं कि जब आप दावत का काम करें तो लोगों को पॉइंट आउट कर करके ना कहें, या तो हम बिल्कुल ही ऐसे नरम हो जाते हैं कि हारे को जन्नत के फतवे देने शुरू कर देते हैं कि तू भी जन्नती तू भी, तो बस तू जन्नत में ही गया, अभी गया तो अभी गया, और यहाँ फिर उनको जहन्नमी करार दे देते हैं। तो अजाब की भी बात बताई, सलामती की भी बात बताई, इसलिए कि जब आप दावत का काम करते हैं, और खास तौर पे अगर कोई बिगड़ी हुई कौम हो ना, तो सिर्फ इनामात की बात नहीं की जा सकती, इंतजार की भी जरूरत होती, वार्न करने की भी जरूरत है। जैसे अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को शुरू की जो वही थी, तो उसके अंदर क्या फरमाया, कुम फअंजिर, ए नबी आप खड़े और इंतजार करें, वार्न कर दें इन लोगों को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में पहली दफा खुलेआम तबलीग की थी, तो कोहे सफा पे चढ़ गए थे, और क्या फरमाया था, अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि एक लश्कर है पीछे जो हमला करने वाला है, तो तुम मेरी बात मानोगे? ठीक है ना, लश्कर की बात की, ये नहीं फरमाया कि इनाम लेके लोग खड़े हैं पीछे। यानी बताया कि, और या सबाहा क्या के ऐलान कराया था, या सबाहा तब कहा जाता था वहां पे उस जमाने में लोगों को, जिस वक्त के कोई खतरे की बात होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरियां नहीं दी थी उस वक्त, बताया था कि देखो ये रास्ते पे अगर चलोगे तो आगे क्या है, खतरा है, यही इंतजार होता है। ये यहां पे भी फिरौन को भी बताया जा रहा है कि अगर तुमने तकजीब की, तुमने मुंह मोड़ा, तो फिर देखना अजाब है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा, और हम अपनी तरफ से ये बात नहीं तुम्हें कह रहे कि वो हमारे पर गुस्से होना शुरू हो जाए। قال فمن ربكما يا موسى, आगे से देखें ना फिरौन की वो बात, तो देखें कि बजाय इसके कि कोई इस बात का जवाब देता, कहता है तुम्हारा दोनों का रब कौन है मूसा, खास तौर पर मूसा अलैहि सलाम से बात कर रहे हैं। قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी खलकत दी, तखलीक दी, उसकी सूरत दी। ये एक माना है ये कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को अता की, उसकी उसकी क्रिएशन, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी शक्लो सूरत ये उसने अता की। दूसरा माना है हमारा रब वो है जिसने हर शय अता की अपनी मखलूक को, अपनी खल्क को हर चीज अता की, अल्लदी आता कुल्ला शय, अता की हर चीज खल्का हो अपनी मखलूक को, अपनी क्रिएशन को हर चीज अता की। और वाकई हर चीज अल्लाह ने ही अता की है, चाहे वो हवा पानी से लेके, इस जिस्म से लेके, और जितनी हमारी जरूरियात अल्लाह ने ही अता की। और दूसरा भी माना यही कि उसने हर चीज को अता की उसकी तखलीक। आज हम जो कुछ भी हैं, जो हमारे नाक, नक्शा, हुलिया, हमारे आजा, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद, अल्लाह ताला की वजह से हर चीज उसने, इस वजूद की उसने अता की है। सुम्मा, फिर सुम्मा जब आता है तो तराखी के लिए आता है, यानी डिले, यानी वजूद देने के बाद, हर चीज को क्रिएट करने के बाद, सुम्मा हदा, फिर हिदायत भी दी। एक हिदायत वो होती है जिसको तकवीनी कहते, ता कैफ वाव या नून या, ठीक है, तकवीनी, वो वाली हिदायत है कि जो आप देखें कि बच्चे को दूध पीना सिखाना, या बच्चा बच्चे को भूख लगी है तो उसने रोना, या उसको कोई तकलीफ है तो वो रोने लगता है, उसको रोना किसने सिखाया, उसको दूध पीना किसने सिखाया, शेर को शिकार करना किसने सिखाया, परिंदों को उड़ना किसने सिखाया, कौन सी एकेडमी में वो ये ट्रेनिंग लेते हैं, कौन से लेसन ले रहे हैं वो, मछली को तैरना किसने सिखाया, हनी बी को किसने सिखाया कि वो शहद बनाए, उसने अपना छत्ता, इतना हमने सूरह नहल में पढ़ चुके हैं कि कैसे वो अपना छत्ता बनाती, वो इतना परफेक्ट छत्ता उसको बनाना किसने सिखाया, ये हिदायत तकवीनी है। ठीक है, अब शेर को क्या पता कि मैंने शिकार ही करना है तो मैंने गोश्त ही खाना है, वो घास क्यों नहीं खा लेता, ये तकवीनी हिदायत है, अल्लाह ने डाली है हर एक के अंदर, नेचुरल उसका जो बिहेवियर है। और एक हिदायत वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबरों के जरिए आती है, ठीक है, वो भी हिदायत है, जिसमें इंसान को बताया गया कि तेरे वजूद का मकसद क्या है, तो क्यों दुनिया में आया है। तो एक तकवीनी हिदायत तो हर एक को मिली है, दूसरी हिदायत हर कोई नहीं पाता, ठीक है, तो वो है हमारा रब। तो रब का तारुफ उन्होंने कैसे कराया, उन्हें ये नहीं कहा कौला रबुल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, ये नहीं कहा, वरना तो उसको समझ ही नहीं आनी थी कौन अल्लाह, फिर उसने ये कहना था, ओ हमारा रब वो है जिसने हर चीज कुल्ला शही, इनमें कोई चीज बाहर रही नहीं। अब चरिंद परिंद से लेके जानवरों से लेके दरिंदों से लेके इंसान और जिन्नात, हर चीज को उसकी तखलीक उसने दी है। और फिर वो सिर्फ खालिक ही नहीं है, हादी भी वही है। ठीक है, हर चीज को उसका मकसद जिंदगी बताया है, हर चीज को उसकी उसको चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, उसको खाना सिखाया, उसको अपनी जरूरत पूरी करनी सिखाई, और इंसान को भी बताया हर चीज। देखें, इवन सूरज चांद सितारे, कहने को वो नॉन लिविंग थिंग्स है, सिर्फ ये ना सोचेंगे लिविंग थिंग्स को सिखाया, जानदारों को नहीं। ये बेजान चीजें जिनको हम समझते हैं बेजान, सूरज चांद वगैरह, इनको भी अल्लाह ने हिदायत दी, कब निकलना है, कब चढ़ना है, कब क्या किधर पहुंचना है, किस वक्त किस स्पीड से चलना है, किस मदार में चलना है। तो कितनी बड़ी, अब कौन दुनिया में ये दावा कर सकता है इस चीज का कि मैंने ही सब कुछ क्रिएट किया है, तखलीक किया, और मैं ही सबकी रहनुमाई कर रहा हूं। अब कोई हंसेगा ये सुन के कि शेर को भी इसने ही दौड़ना सिखाया, तो शेर से भी इतना डरता होगा, इसने परिंदों को उड़ना सिखाया, वो खुद तो उसको उड़ना आया नहीं, इसने कैसे सिखा दिया। तो कोई कोई दावा कर ही नहीं सकता ना। ये यहाँ पे जाके इंसान बेबस हो जाता है, फिर उसको मानना पड़ता है कि नहीं, एक वो रब है जिसने ये सब किया। ठीक है, इसका कौन जवाब देगा बताए, कौन कोई कह सकता है नहीं हाँ हमने किया, या मेरे खुदा ने किया जिसको मैं खुदा मानता हूँ, कौन सा बुत है, कौन से पैगंबर है, कौन सा फरिश्ता है, कौन सी को कि जिनको भी कोई पूजता है बताएं, जिसको भी खुदाई का दावेदार, जो भी खुदाई का दावा करता है, उनमें से कौन है जो ये सब कर सकता है। इवन फिरौन भी नहीं कह सकता था कि मैंने सब कुछ बनाया। काला फमा बाल कुरून अल्ऊला, अच्छा फिर उनका क्या मामला है, ये फिरौन कहता है उनका फिर क्या मामला है जो पिछली कौमें गुजरी हैं। यानी कितना ट्रिकी क्वेश्चन उसने किया। और ये अक्सर जो मुशरिकीन होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, अच्छा फिर हमारे जो पिछले गुजरे में बताओ उनका क्या हाल है, तुम तो कह रहे हो कि इन अलादा बाला मन कर दबा बता वाला, उनके लिए तो अजाब है जो कि झुटलाए और मुंह मोड़ जाए, तो वो तो हमारे जो पिछले चले गए वो कहाँ है फिर बताओ, अब इस वक्त वो किधर, वो क्या अजाब में है, मतलब अगर कहेगा अजाब में है तो फिर मैं सबको कहूंगा देखो देखो जी, इसने तो हमारे अबाऊ अजदाद को भी कह दिया कि वो अजाब में पड़े हैं, सारे उनके मुखालिफ हो जाएंगे। अगर वो कहते हैं जन्नत में है तो ये तो झूठ है, वो मुशरिक थे, वो कैसे जन्नत में चले गए। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन करके ना शरारत करते हैं और दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं आज भी ये लोग। कहते हैं आप हमें तो बता रहे हैं, ठीक है आप कहते हैं कि अगर शिर्क के ऊपर मर गए तो जहन्नुम है, तो हमारे तो पेरेंट्स यही करते थे, तो क्या वो जहन्नुम में चले गए। अब बंदा आगे से क्या जवाब दे, कुछ सोचे। तो ये बड़ा जबरदस्त जवाब है जो हमें भी सीखना चाहिए कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ट्रिकी क्वेश्चन को हैंडल किया। कौला इल्मुहा इंदा रब्बी फी किताब, मेरा काम ये थोड़ी है कि मैं बताऊंगी कौन जन्नत में गया, कौन जहन्नुम में गया, अजाब में है कि सलामती में है कि क्या है, क्योंकि पीछे उन्होंने बताया है ना आयत नंबर 47-48 में उन्होंने बताया कि कौन सलामत रहेगा, कौन अजाब में होगा। तो अब बताएं जरा, वो सलामत है कि वो अजाब में है, तो नहीं मैं ये बताने के लिए तो नहीं आया, इसका इल्म तो मेरे रब के पास है और एक किताब में मौजूद है कि लोहे महफूज में मौजूद है, अल्लाह के हाँ एक किताब में सब कुछ लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं ये जवाब देने नहीं आया। तो ये भी हम यही कह सकते हैं कि वल्लाहु आलम, अल्लाह को पता है, मुझे क्या पता आपके बड़े किधर हैं। तो एक तो बात को देखें सही से दूसरी तरीके के ऊपर मोड़ दिया, दूसरे ये कि झूठ भी नहीं है इसके अंदर। तो शातिराना उसका सवाल था ना फंसाने का, लेकिन और इसके दो ही जवाब हो सकते थे, सलामती या अजाब। तो देखिए कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया, ला युदिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब तो भूलता भी नहीं है, गलती भी नहीं करता, तो फिक्र ना करो। जो उन्होंने मतलब वो जहां पे भी होंगे, मेरा रब कहीं पे भी किसी के भी अमल को ना गलती की है, ना गलती कर सकता है वो, और ना वो भूल सकता है, तो उनको भी ना भूला ना उनके लिए कोई गलत फैसला करेगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लदी जाला लकुमुल अर्द मिहादा महदा, सॉरी मिहाद तो वहां पे है 30वें पारे में, जिसने जमीन को बना दिया बिछोना, जोना ने हमवार कर दिया, इसको फ्लैट कर दिया कि इंसान इसके ऊपर आराम से रह सकता है, इसको रहने के काबिल बना दिया। आपको पता दूसरे सैयारे कोई भी ऐसा नहीं है जहां पे इंसान की लाइफ बढ़ सके, वो रह सके। तो या तो उनके मौसम ऐसे हैं, या उनके टेम्परेचर्स ऐसे हैं, या उनमें हवा नहीं है, या पानी का ट्रेस नहीं है। तो ये वाला बात जो है ना, ये आयत 53 और 54, बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का कलाम है जो बीच में अल्लाह ताला ने फरमाया, बाज कहते हैं मूसा अलैहि सलाम का ही पैगाम का हिस्सा है। तो पहले बता दिया मूसा अलैहि सलाम ने, मेरा रब ना भटकता है ना भूलता है, क्योंकि इसका ताल्लुक तो जवाब से उससे नहीं था जो उसने पूछा था, लेकिन फिर भी उसको तसल्ली दिला दी कि तुम इसकी फिक्र ना करो जो पिछले गुजर गए। और फिर अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह ताला तो वो जात है, या मूसा अलैहि सलाम बता रहे हैं कि अल्लाह तो वो जात है जिस रब के बारे में तुम पूछ रहे हो, वो जात है जिसने इस जमीन को, जिस पे हमारा सर्वाइवल है, इसको हमारे लिए बिछाया, वसलक लकुम फीहा सुबुला, और इसमें रास्ते बना दिए। अच्छा, अगर हम अल्लदी जाला जाला कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों ने बनाया, अलिफ अगर लगा दिया, अगर जरा सा भी लंबा लाम को कर दिया, इसी से पता चलता है ना आपको, जब कहा जाता है तजवीद के ऊपर गौर करें, तजवीद को सीखें, तो इसीलिए कि अल्लाह ना करे कि माना ही बदल गया तो एक शिर्क का माना हो जाएगा कि उन दोनों ने बनाया जमीन को, एक ने नहीं बनाया। फिर तो फिर अल्लाह ना करे कि हम किसी मतलब अपनी नादानिस्ता तौर पे, इंटेंशनली तो कोई नहीं करता, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसे हमसे अन इंटेंशनली कहीं ऐसी गलती हो जाए जिसमें उल्टा गुनाह हो। तो उसने बनाए तुम्हारे लिए जमीन में रास्ते, आपको पता है जमीन में भी रास्ते होना ये भी अल्लाह ताला की निशानी है, जिसको अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान फरमाता है, क्योंकि जमीन के रास्ते इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। अगर जमीन ऐसे होती कि इसमें रास्ते ही ना होते, कहीं रास्ते बन ही ना सकते, पहाड़ों का ऐसा सिलसिला है उसमें से रास्ते नहीं बन सकते, फिर आगे पानी है उसमें से भी रास्ता नहीं बन सकता, फिर कहीं ऐसी जमीन है कि जिससे रास्ता ही नहीं बन सकता, गदली जमीन है, पैर धंस जाते हैं बीच में, ऐसे होता तो कैसे इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता, कहीं जा ना सकता, सब निजाम खत्म हो जाता। लेकिन हमें चूंकि कभी ऐसा हुआ नहीं, हमने देखा ही नहीं कभी, तो हमें एहसास ही नहीं कि रास्ते भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, ये भी एक नेमत है। हम गाड़ी में बैठते हैं, चलो ये शुक्र कर लेते हैं हमारे पास गाड़ी है, और चलो ये शुक्र कर लेते हैं कि हमने एक दुआ पढ़ ली सवारी की, और बड़ा अच्छा मौसम है, या सीनरी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये रास्ता अल्लाह ने बनाया, सला का उसने बनाए, पिरोने के लिए आता है, वैसे वैसे पिरो दिए जमीन में रास्ते, तो ये नेमत है। अगर जैसे कोविड से पहले हमें कई चीजों का पता ही नहीं था कि ये भी नेमते हैं ना, अल्लाह ना करे कोई भी नेमत छिने तो हमें एहसास हो, इस तरह हमें रास्तों का भी नहीं एहसास है कि ये भी कोई नेमत है। अनज़ल मिन अस्समा इमाअन, और नाजिल किया आसमान से पानी, वो रब है, रब की का इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है कि तुम पूछ रहे हो ना तुम्हारा रब कौन है, तो वो रब है। फिर देखें इसको इत्तेफात कहते हैं, ते के साथ इत्तेफात कहते हैं कि गायब से मुतकल्लिम का सीगा आ जाए, यानी अभी गायब का सीगा वो है, वो है। फिर अखरजना, फअखरजना हमने निकाली भी अजवाजम मिन नबातिन शत्ता, और ये अरबों का एक तरीका होता था, उनकी फसाहत और बलागत का हिस्सा था कि इस तरह से पहले थर्ड पर्सन में बात की जाए, फिर फर्स्ट पर्सन में बात आ गई, वो ऐसा, फिर उसके बाद मैं या हम, ठीक है। क्योंकि कुराने पाक जो है ना वो एक तकरीर की फॉर्म में है, तहरीर नहीं है, बाद में लिखा तो बाद में गया, लेकिन एक खिताबत का इसका अंदाज है, खिताब किया जा रहा है, तकरीर की जा रही है, उसमें ऐसे सीगे बदलते हैं। तो हमने निकाली इसमें कई अकसाम, मुख्तलिफ पौधों में से, मुख्तलिफ नबातात से। आप देखें कि एक एक नबातात में भी कितनी कितनी फॉर्म्स हैं। एक खजूर को ले लें, मतलब खजूर डिफरेंट चीज है, अंगूर डिफरेंट चीज है, सेब डिफरेंट चीज है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नबातात है, लेकिन उनके अंदर भी अजवाज, उसमें भी कई किस्में ऐसी हैं। अब खजूर की कितनी किस्में हैं, कोई किसी किस्म की है, कोई किसी किस्म की है। जब आप देखते हैं खजूरों के ढेर लगे हुए, जब आप मक्का मदीना जाते हैं, तो आप हैरान होते हैं कि इतनी किस्में हैं खजूरों की। कुलू वराउ अनआमकुम, तो ये तो एक चीज है, खैर और भी सारी चीजों के अंदर आप अंदाजा कर लेंगे कितनी कितनी अकसाम है, कितने कितने जायके हैं। खाओ यानी इंसान के लिए, खाने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया, कितनी बड़ी उस रब की मेहरबानी है कि तरह तरह की चीजें उगा दी उसके लिए। वराउ अनआमकुम, और चराओ अपने मवेशियों को, सिर्फ तुम्हारे लिए ही इंतजाम नहीं किया इस जमीन में, तुम्हारे जो भी जानवर हैं उनके लिए भी इंतजाम फरमाया कि वो भी चरें। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन्नुहा, इसके अंदर निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, जिसमें थोड़ी समझ होगी, कोई अक्ल होगी ना, बड़ी कुछ इससे हासिल कर लेगा इन चीजों को देख के। असल में ये भी उस्ताद है, ये जो निशानियां है ना इधर कायनात में बिखरी हुई है, चाहे वो कोई फल फ्रूट है, चाहे वो कोई दरख्त है, चाहे फूल है, ये सब आसमान और जमीन है, ये सब हमें कुछ सिखाने के लिए है। ये अल्लाह की निशानी है, ये उसकी तरफ रहनुमाई करती है। लेकिन अगर इंसान अकल से काम ले तो फिर ना, अगर इंसान इनके ऊपर कभी सोचे तो सही। खाते हैं पीते हैं, रोज खाते पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी इस नजर से देखा कि वो फल या वो नबातात, वो पौधे, वो या वो अनाज हमें अल्लाह तक पहुंचा दे, वो हमें याद आ जाए। खाने से तो पहले ना बिस्मिल्लाह याद आती है, ना उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह याद आती है, गौर व फिक्र क्या करेंगे।